एक व्यक्ति किसी के घर में मेहमान बनकर आता है और जिसके घर मेहमान आता है वो अंदर जाता है, तब तक ये जो बाहर बैठा हुआ मेहमान है देखता है वहां एक तस्वीर टंगी हुई है। वो इस तस्वीर को निकालता है और जिसका वो घर है, वो जब आता है और उसी के घर की तस्वीर निकालकर उसी से कहता है कि ये तस्वीर मैं तुम्हारे लिए भेंट लाया हूं। जो मित्र है वो जानता है ये मेरे ही घर की तस्वीर मुझे ही भेंट कर रहा है। क्या हम भी ऐसा ही नहीं कर रहे? ये घर किसका है? उसका। उसके घर में हम आए और उसी के घर की टंगी हुई तस्वीर निकालकर उसी को ही भेंट कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने उसे कुछ दिया। ये जो कुछ भी है हमारा कभी था ही नहीं, क्योंकि ये हमारे आने से पहले भी था। हम जब है तब है और जब हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। पर मनुष्य इस भ्रम में जीता है कि वो इतना सब कुछ कर रहा है भगवान के लिए, पर वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आज का पुरुषार्थ, मैं फरिश्ता मेहमान हूं, गेस्ट। एक है सोल कॉन्शियसनेस, एक है रोल कॉन्शियसनेस, एक है एक्शन कॉन्शियसनेस, कर्म कॉन्शियसनेस, वर्क कॉन्शियसनेस, ड्यूटी कॉन्शियसनेस, एक है एंजेलिक कॉन्शियसनेस, एक है गॉड कॉन्शियसनेस। आज हम देखेंगे गेस्ट कॉन्शियसनेस। किस भाव में रहना है? मैं कौन हूं? एक मेहमान हूं, एक गेस्ट हूं। और ये संसार क्या है? ये संसार की तुलना बहुत सारी चीजों से की गई है। सबसे पहला तो ये एक मुसाफिर खाना है, जहां पर यात्री आते हैं, रात भर रुकते हैं, सुबह चले जाते हैं। रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, इन, मोटेल, इन है ये। थोड़ी देर के लिए यहां आते हैं, विश्राम करते हैं और चले जाते हैं। दूसरा, ये संसार एक समुंदर है, लहरें आ रही है, लहरें जा रही है, जन्म और मृत्यु का ये सागर है। इसको भव सागर कहा जाता है। जन्म है, मृत्यु है, मृत्यु है, जन्म है, फिर पुनर्जन्म, अनंत सागर है। तीसरा, यह संसार एक झाड़ है। यह संसार क्या है? झाड़। पक्षी आते हैं, रात भर रुकते हैं, सुबह उड़ चले जाते हैं। और वैसे भी यह संसार झाड़ है। बाबा क्या कहते हैं? यह सृष्टि का वृक्ष है। अर्धमूलम मदश्याकम अश्वत्थम प्राहुरे वयम, भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। अर्धमूलम मदश्याकम, उसकी शाखाएं नीचे है, मूल ऊपर है। आज की मुरली में भी याद किया है बाबा, जो ऊपर का है वो नीचे है, ट्री है। ट्री से क्या आ सकती? एक किसी ने बहुत अच्छा चित्र भेजा था, निखिलेश भाई बना सकते हैं वैसा चित्र। ये परमधाम, यहां से एक झूला लटक रहा है और ये धरती है। यहां लिखा है लेट्स प्ले ऑन अर्थ, चलो जाकर धरती पर खेलते हैं। झूला कहां से लटक रहा है? परमधाम से। यहां दो बच्चे बैठे हैं, वो कहते हैं चलो धरती पर जाके खेले। तो ये संसार एक झाड़ है। अगला, ये संसार सीढ़ी है। बाबा कहते सीढ़ी का चित्र, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 84 जन्मों की ये सीढ़ी है। तो इसमें चढ़ना उतरना सब चलता है, चालू रहता ही रहता है। ऐसा ये संसार है।
ये संसार एक चक्र है, व्हील,
घूमते रहता है, गोल 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 गोल, गोला कहो, चक्र कहो, सृष्टि चक्र, घूमते रहता है। दिन रात मौसम जैसे बदलते रहते हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है इसमें। कोई भी एक युग स्थिर नहीं है, चाहे कितना भी हो, कैसा भी हो, वो बदलेगा जरूर। फ्लक्स की अवस्था है, निरंतर एक प्रवाह है। तो ये घूमते रहता है। कोई कहे कि नहीं मुझे यही चाहिए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, सतयुग को, वो चाहे या ना चाहे, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हारे शरीरों को जलाकर आत्माओं को ले जाने मैं आया हूं।
छठवां, ये संसार एक ड्रामा है।
एक्टर्स, कौन से एक्टर्स? पुराने एक्टर्स फिर मंच पर आ गए हैं। क्यों आ गए पुराने एक्टर्स? अपना अधूरा बदला चुकाने, अपना अधूरा पार्ट जो रहा था, अधूरे हिसाब थे, जो प्रतिज्ञा की थी पिछले जन्म में, इसको मारूंगा, इसको मार कर ही रहूंगा, वो अपूर्ण रह गई थी, इसलिए फिर आ गए। तो ये वो ड्रामा है जिसमें पुराने किरदार, पुराने पात्र फिर नए वस्त्र धारण कर उसी रंगमंच पर आए हुए, ऐसा ये ड्रामा है। सातवां, ये संसार एक खेल है, स्पोर्ट, गेम, हार जीत, खेल हो रहा है, ग्राउंड है जिस पर ये खेल हो रहा है, प्लेग्राउंड, मैदान है, स्टेज भी है जिस पर ड्रामा हो रहा है, मैदान है जिस पर खेल हो रहा है, ऐसा ये संसार है। उसके बाद में ये संसार स्वप्न है। क्या है ये? स्वप्न, जो कुछ हो रहा है इसे स्वप्नवत देखना है। अभी तक एक ही मुरली है जिसमें ये आया है साकार में, नहीं तो हमेशा ड्रामा आता है, खेल आता है। स्वप्न एक मुरली है जिसमें आया था कि ये सारा संसार एक स्वप्न है। और दसवा, ये संसार प्रकृति और पुरुष का जोड़ है, प्रकृति और पुरुष, सांख्य शास्त्र कहते हैं इसे, कपिल मुनि का। क्या खेल चल रहा है प्रकृति का और पुरुष का? वो पुरुष कौन है, वो पुरुष कैसा है और प्रकृति क्या है, इसकी खोज। इन दसों बातों को देखा जाए तो इन सभी में एक चीज है, नौ हुई कि दस हुई, मेला, मेला। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी संसार के साथ तुलना की गई है और इन सभी तुलनाओं में एक चीज कॉमन है और वो है अनित्यता। ये संसार कैसा है? अनित्य है, चेंज है, निरंतर बदल रहा है, कुछ भी यहां पर स्थिर नहीं है। तो आज का हमारा समान या अभ्यास है, मैं कौन हूं? मेहमान हूं, अव्यक्त वाणी, 3 अप्रैल 1982, फरिश्ता अर्थात मेहमान। ऐसे अगर कोई भी कर्मेंद्रियों की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने में बार बार नीचे ले आएगी, तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो यह तो बहुत थोड़ा है, लेकिन यह थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है, संपूर्ण त्याग चाहिए। थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो, यह देह बहुत मूल्यवान है। इस देह के साथ हिंसा, इस देह के साथ अत्याचार, इस देह को दुख नहीं देना है, इस देह को स्वस्थ रखना है, परंतु इस देह को भोग विलास में डुबोना भी नहीं है। कोई कहता है ना, ज्यादा टेंशन नहीं रहो, रिलैक्स रहो, और जाते जाते कहते ज्यादा रिलैक्स भी मत हो, टेंशन वाली बात है, इतना भी रिलैक्स मत हो जाओ। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। इस शरीर के दो ही काम है संगम युग पर, एक सेवा और दूसरा तपस्या, और इन दोनों ही चीजों के लिए शरीर कैसा चाहिए? स्वस्थ शरीर चाहिए। एक रोगिष्ट शरीर, एक बीमार शरीर, एक भारी शरीर, अस्वस्थ शरीर, रुग्ण शरीर, ये दोनों ही चीजों में असमर्थ हो जाता है। इसलिए निरंतर वो खोज चालू रहे कि क्या है जो शरीर को विकृत रुग्ण करता है, और क्या है जो शरीर को स्वस्थ रखता है, ऊर्जावान रखता है, शक्तिशाली बना के रखता है, लचीला रखता है। शरीर के तल पर क्या क्या चाहिए? स्वास्थ्य। शरीर के तल पर क्या क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, शरीर के तल पर क्या क्या चाहिए, स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर, ताकत, शरीर के तल पर क्या क्या चाहिए, ऊर्जा, स्टेमिना, कितना वो सहन कर सकता है दुख को, पीड़ा को, दर्द को। हिंदी में शब्द है सहन करना, और एक शब्द है सहन शक्ति, और एक शब्द है सहनशीलता, तितिक्षा। अंग्रेजी में अलग अलग शब्द है, एक शब्द है टॉलरेंस, हम सब जानते हैं। इसके भी ऊपर एक शब्द है जिसको कहते हैं एंड्यूरेंस, ग्रेट टॉलरेंस। उसके भी ऊपर एक शब्द है फॉरबेयरेंस, बहुत ज्यादा सहन करना। उसके भी ऊपर एक शब्द है फॉर्टिट्यूड, अत्यंत सहनशील। कितनी भी शारीरिक पीड़ा दी जाए, सताया जाए, फिर भी हारते नहीं, मर जाएंगे, उसके भी ऊपर एक शब्द है स्पार्टन सिंप्लिसिटी। स्पार्टा नाम का एक देश है, प्रदेश है, वहां के लोगों में ये हाईएस्ट है, कितना भी मारो सताओ सब सहन कर लेते। ये जो फोर्टिट्यूड है इसको इंग्लिश में, हिंदी में तितिक्षा कहते हैं, वो सहनशीलता कितनी है। तो शरीर ऐसा हो जो मजबूत हो, शरीर ऐसा हो जो स्वस्थ हो, शरीर ऐसा हो जो हल्का हो, शरीर ऐसा हो जो फास्ट हो, दौड़ सके, शरीर ऐसा एक्टिव हो, डल नहीं हो। ये सारी चीजें शरीर में चाहिए, क्या है अपने आप से पूछो। स्ट्रेंथ कहां से आएगी, एक्सरसाइज से। एक्टिवनेस कहां से आएगी, कार्डियो, वॉकिंग, रनिंग, ये सब चीजों से। हेल्थ कहां से आएगा, फूड, किस तरह का ले रहे हैं। लचीलापन कहां से आएगा, ये आसन, योगासन। फ्लेक्सिबल चाहिए शरीर, चाहे आसन, चाहे थाई ची, कुछ भी, डांस। शरीर वो हो जो डांस कर सके। कईयों का शरीर इतना भारी है कि डांस, रनिंग, भाग दौड़, ये सब होता ही नहीं। एक जगह बैठ के जो करना है बताओ। एक हारा हुआ नेता किसी के यहाँ नौकर बनकर आता है। मालिक कहता है जाओ जाकर सब्जी लेकर आओ। वो कहता है मुझे सब्जियों की परख नहीं, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी खरीदी नहीं। मालिक खुद ही लेके आता है। मालिक कहता है जाओ जाकर भोजन बनाओ। वो कहता है मुझे चूल्हे की आदत नहीं है। मालिक खुद ही बनाता है। फिर मालिक कहता है खा लो। वो कहता है हर बार ना कहना अच्छा थोड़ी लगता है, कितनी बार ना करूं। यह मेरी देह नहीं लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। देह किस लिए, सेवा अर्थ। देह किस लिए, तपस्या के लिए। ये दो ही काम है देह के, पर इन दोनों के लिए ये सब चीजें चाहिए जो अभी बताई। देह में स्फूर्ति हो, शक्ति हो, पावर हो, लचीलापन हो, कोई थकान ही ना हो, ऐसी देह जो कभी ना थके। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब जवान जवान लोग आते कहते क्या तकलीफ है, थकान। कोई बूढ़ा 80 साल का है वो कहे तो ठीक है, कोई 90 साल का है शायद, पर जवान जवान तकलीफ क्या है, थकान, शरीर में दर्द, कमर में दर्द। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है, तो आप क्या बन गए, मेहमान। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है, अपना घर याद रहता है, या उसी में ही फंस जाते हैं। तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है, उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे जैसे, किसने पढ़ी है ये मुरली 82 की, अभी अभी चली है, अभी अभी मतलब एक दो साल में, संडे ये मुरली शायद यहीं पे रिवाइज हुई है, या मेडिटेशन हॉल। इस पुराने शरीर में ऐसे रहो जैसे पुराना घर, जैसे जैसे कचरे का डिब्बा। इस घर में ऐसे रहो जैसे टीचर, कैसे इस शरीर में ऐसे रहो जैसे यहाँ के है ही नहीं, जैसे ये गेस्ट हाउस है, ये सरा है, जैसे जैसे ट्रस्टी है अवतार, जैसे इस शरीर में ऐसे रहो जैसे यस, जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते, जैसे मैं इस तन में रहता हूं वैसे तुम उस तन में रहो। भगवान उवाच, जैसे मैं, कौन कह रहा है? शिव बाबा। लोगों को लग रहा था ये शिव बाबा कह रहा है परंतु ये ब्रह्मा के अनुभव बोल रहे थे अंत में। मैं इस तन में ऐसे रहता हूं जैसे यहां हूं ही नहीं, इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। वो आता है शरीर में और फिर निकल जाता है। उसको कुछ लगता है यहाँ की कुछ कुछ चीजें ले जाऊं, हमें होता है ना, कहीं पर जाओ तो अगर कोई न देख रहा हो तो दो तीन चीजें तो साथ में। डॉक्टर अब्दुल कलाम 5 साल हो गए प्रेसिडेंटशिप खत्म, 10 ईयर पूरा होने के बाद में जब गए एक बैग थी बस। हम यदि होते तो कितने ट्रक ले जाते। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, न्यारेपन के ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो, त्याग का पहला कदम पूरा किया है, त्याग का पहला कदम पूरा किया है। तो गेस्ट कॉन्शियसनेस, तो पहला भाग था ये संसार क्या है और अब है ये गेस्ट जो होते वो किस भाव से रहते। सबसे पहली बात गेस्ट की, कोई अटैचमेंट नहीं होता है उसको। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको पता है मुझे यहां 4 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, 2 दिन रहना है, किससे अटैच हो? अटैच नहीं हो जाता। दूसरा, अपना लगेज हमेशा लाइट ही रखता है। कौन इतना सारा ले जाएगा 2 दिन के लिए और इतना वापस लेके आओ। तीसरा, 3 दिन के लिए आए हैं माउंट आबू के लिए, जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो देख के जाएंगे, साइट सीइंग। कोई ये सोचता है यहां आए तो चलो यहां का शमशान घाटी देखने चले, कौन जाएगा देखने? यहां का बस स्टेशन देखने, बस स्टैंड देखने जाते। यहां आए हैं तो क्या देखना है? जो अच्छी अच्छी जगह है, जो दूसरों में गुण है वो देखना है। थोड़े समय के लिए तो आए हैं, उसमें भी खराब खराब चीजें थोड़ी देखी जाती है। चौथा, जो खराब है वो नहीं देखा जाता है। तीसरा, जो अच्छा है वो देखा जाता है। गेस्ट क्या देखता है? अच्छा अच्छा जो चीज है वहां जा, कोई भी नए शहर में जाने के बाद हम क्या पूछते हैं? यह देखने की कौन कौन सी जगह है, साइट सीइंग के लिए क्या क्या है, ये दो। अगला, एक गेस्ट जो होता है वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। हम यहां 3 दिन के लिए आए, देखा बाहर यहां वहां झगड़े झगड़े हो रहे, झगड़े सॉल्व करने नहीं जाता है, ज्यादा दूसरों के मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होती है। क्योंकि एक ही दिन तो रहना है उसको, एक दिन रहना है उसमें क्या, वो लोग सदियों से रह रहे हैं, उनकी सदियों की आदत है। एक सराय में एक व्यक्ति आता है, कहता है रूम चाहिए, वो मालिक कहता है नॉट अवेलेबल, रेस्टोरेंट में रूम ही नहीं है खाली। वो कहते हैं प्लीज ट्राई करो, मुझे केवल एक रात के लिए रुकना है। तो कहता है हाँ एक रूम खाली है, पर उसमें जो नीचे ऊपर की रूम है, पर नीचे जो व्यक्ति है वो इतना झगड़ा करता है, इतना झगड़ा करता है, जरा भी अगर तुमने आवाज की ऊपर तो झगड़ा हो जाएगा। वो कहता है मैं तो लेट आऊंगा और सुबह जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, झगड़ा करने का सवाल ही नहीं, मैं आऊंगा 11-12 बजे, सुबह 3-4 बजे निकल जाऊंगा। कहते देख लो तुम, क्योंकि वो बहुत झगड़ालू है। तो ये व्यक्ति सारा काम करके रात को 11-12 बजे पहुंचता है अपने कमरे में और थका होता है, जूता निकालता है, पटकता है, पटक मतलब अपने आप होता है वो, एकदम से ख्याल आता है कि नीचे का आदमी है, झगड़ा हो सकता है, तो दूसरा जूता आराम से निकलता है और रखता है और फिर सो जाता है। 15 मिनट के बाद दरवाजे में ठक ठक, दरवाजा खोलता है नीचे का व्यक्ति, ऊपर पूछता है वो दूसरे जूते का क्या हुआ। What is happening in others' lives? दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरा जूता किधर है? यही प्रश्न है हर एक का, दूसरा जूता किधर है? तुम अपने जूते का ख्याल करो, अपने जूते को देखो, दूसरे का जूता कहाँ गया, तुम्हें क्या करना है? तो गेस्ट अर्थात बिना जूते के, वो भी सही है, तो मेहमान अर्थात नो इन्वॉल्वमेंट, नो इंटरफियरेंस, जो हो रहा है होने दो उनके जीवन में। हाँ उनके प्रति कल्याण की भावना रखना, वो सुधर जाए, ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु उससे अगर झगड़ा ही हो रहा हो तो सामने का पात्र है कि नहीं, वो सुनने की कंडीशन में ही नहीं है, तो उसको कहाँ से समझाएंगे कुछ? पैगाम तो देना है, आज की मुरली में तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो, बट सब कुछ देखते हुए। तो मेहमान अर्थात इंटरफियर नहीं करता है वो, और मेहमान आया है 3-4 दिन के लिए, हमेशा लक्ष्य रहेगा कि जहां वो रहता है वो स्थान कैसा हो जाए, साफ सुथरा रहे, चाहे पहले किसने कितनी गंदगी की वहां पर, वो ये थोड़ी ना देखता है, वो पूछता है कोई कमरा लेने के बाद कि किसने ये खराब करके रखा है, अब जो मिला है वो मिला है, अब उसको ठीक करो। और जाते समय भी कुछ यादगार, उसको सुंदर करके जाओ, जो तकलीफ मुझे हुई दूसरों को नहीं होनी चाहिए, हम गए तो इतना कचरा निकालना पड़ा, इतना कचरा निकालना पड़ा, कितनी तकलीफ हुई हमको, तो हम जब जाए तो साफ सुथरा छोड़ कर जाए। आज जाने वाले हैं ना, तो कमरा देख लेना कैसा है, एकदम जैसा लिया था वैसे ही, उससे भी अच्छा करके जाना है। जो क्या त्यू धर दीनी चदरिया, जैसी चदरिया मिली थी वैसे ही साफ सुथरी, दाग ना हो उस पर। तो गेस्ट अर्थात साफ सुथरा करके जाएगा। अगला गेस्ट अर्थात वो एक नियम को समझेगा, चेंज, कि सब कुछ बदल रहा है, आज मैं यहां हूं, कल कहीं और जाऊंगा, इसके पहले 3 जगह जाकर आया हूं, तो उसे वो धीरे धीरे कंपेयर करने लगता है, संसार, जीवन, ये मेहमान, मैं भी मेहमान हूं, मेरे पहले पता नहीं यहां कितने लोग आके गए, ये कमरा मेरे अकेले का नहीं है। मेहमान अर्थात ट्रस्टी, और ट्रस्टी की कितनी बातें उस दिन बताई थी, 8। पहला ट्रस्टी अर्थात बोझ मुक्त, दूसरा ट्रस्टी अर्थात निमित्त, तीसरा ट्रस्टी अर्थात रिस्पॉन्सिबल, तीसरा ट्रस्टी अर्थात समर्पण, ट्रस्टी अर्थात ओनरशिप फ्री, ओनरशिप नहीं, किसी भी चीज का पोजीशन नहीं, मालकियत नहीं, स्वामित्व नहीं, ट्रस्टी अर्थात विनम्र, ट्रस्टी अर्थात ग्रेटिट, ट्रस्टी अर्थात ग्रेटिट्यूड वो परमात्मा प्रेम था, ट्रस्टी अर्थात कोई भी अट्रैक्शन नहीं, ट्रस्टी अर्थात केयर टेकर है वो, ट्रस्टी अर्थात रिस्पॉन्सिबल निमित्त। तो ये सारी ट्रस्टी की बातें है। एक गेस्ट जो होता है वो ट्रस्टी जैसा होता है, केयर टेकर होता है, वो मालकियत का भाव उसमें नहीं होता है, ये मेरा नहीं है, मुझे रहने के लिए दिया गया है 4 दिन 3 दिन। एक तो ये ट्रस्टी है स्थूल, दूसरा इस शरीर में ही मैं गेस्ट हूं, ये शरीर भी क्या है, एक मकान है, उससे भी अच्छा कहो तो शरीर क्या है, मंदिर है, और मंदिर को कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ साफ, ऐसा नहीं कि पकड़ के कुछ भी डालते ही रहो, सुबह से लेके रात तक जो दिखा वो डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया, कचरा भी जितना जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा कचरा, फिर निकालने की मेहनत करनी पड़ेगी। बाथरूम में बैठ के जितना जोर लगाते हो उतना ही जोर अगर मुरलियों के स्टडी में लगा दे कोई तो बेड़ा पार हो जाए, एक एक घंटा उधर जोर लगाने से कॉन्स्टिपेशन इज अ इंटरनेशनल डिसऑर्डर। तो गेस्ट अर्थात खाली पेट तो गेस्ट अर्थात ट्रस्टी, गेस्ट अर्थात केयर टेकर, हर चीज में, कहीं पर भी मालकियत नहीं, ये घर, ये बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, वस्तुएं, स्थान, ऑफिस, चीजें, सब कुछ मुझे ठीक रखना है, संभाल के रखना है, वेस्ट नहीं करना है। ट्रस्टी अर्थात मेहमान अर्थात वो जहां रहता है उन चीजों को भी वैसे ही यूज करेगा जैसे घर की चीजों को, पानी वेस्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं, चाय पिया आधा रख दिया, लिया था वहां से रखा इधर, वस्तु यहां से ली और उधर रख दी, बाकी लोग ढूंढते बैठ रहे कहां है। तो मेहमान अर्थात जो चीज जहां है उसको वहीं रखना, जहां से ली है उसको वापस उसी स्थिति में छोड़ना। अब आगे की पॉइंट्स आप बताएंगे। मेहमान अर्थात बाबा के नहीं, संसार में जो मेहमान है वो पहले बताओ। प्लानिंग बना कर जाते हैं कि कितना दिन रहना है, ट्रेवल प्लान, इटिनरी, कितना दिन तक जाना है, पूरी प्लानिंग, और जाने से एक दो दिन पहले ही फिर रिटर्न जर्नी की भी चिंतन चालू कर देते हैं कि मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते। गेस्ट अर्थात 4 दिन के लिए आए हैं और सोचे मैं यहाँ फैक्ट्री बनाऊं तो और उधर बोल के मैं 4 दिन में आता हूं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस सराय में बैठ के नहीं करनी है। अर्थात बिजनेस का विस्तार, गाय बहुत है, क्यों गाय बहुत है? गाय बहुत है, आप क्या कर रहे हो? अब जमीन चाहिए, जमीन किस लिए? ताकि और गाय मिले, ताकि और गाय को पाल सको, वो किस लिए? ताकि और जमीन मिले, चक्र है, कुचक्र, बढ़ाते जाते हैं और पैसा मिले, पैसा किस लिए? उसके लिए, वो किस लिए? वो उसके लिए, चक्र ही चक्र है। तो ये संसार में भी ऐसा ही है, इसका कोई एंड ही नहीं है। कोई कहे कि मुझे अनुभवी बनना है संसार में, पूरा जीवन लगा दो तो भी अनुभवी, अनुभव तो ऐसी चीज है बढ़ती ही जाएगी। कोई कहेगा मैं अभी विदेश जाके 4 साल अनुभव लेके आता हूं पढ़ाई का, फिर 2 साल ये करता हूं, फिर 3 साल वो करता हूं, यही करते रहोगे पुरुषार्थ कब करोगे? इधर उधर भटकू, ये जाऊं उधर जाऊं, विदेश का अनुभव, देश का अनुभव, ये कंपनी वो कंपनी, ये इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में गेस्ट इन्वॉल्व नहीं करता है अपने आप को, और गेस्ट कॉन्शियसनेस अर्थात रिटर्न जर्नी की प्लानिंग करता है, कैसे जाऊं, एयरपोर्ट उधर है, स्टेशन उधर है, फ्लाइट से जाऊं या उससे जाऊं या उससे जाऊं, सबसे कम समय में पहुंचू, ऐसा कौन सा मार्ग है? और गेस्ट अर्थात मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी को भी तकलीफ ना हो, मैं यहां 4 दिन के लिए आया हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जोर से म्यूजिक कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से जो होस्ट है मेजबान है उसको तकलीफ हो। कितनी अच्छी पॉइंट है। या फिर बाबा कहते हैं तुमको किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी नहीं, हमारी वजह से किसी के संकल्प ना चले। हाँ, जबरदस्ती वो खुद ही चला रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हमारी वजह से दुखी नहीं, वो अपने संस्कारों की वजह से दुखी है। 5% की छूट है, पर वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, वही भारी है 5%। और मेहमान अर्थात क्या क्या साथ, क्या एक लिस्ट होती है, इसको कहते हैं बकेट लिस्ट। अपनी बकेट लिस्ट रेडी रखनी है, क्या क्या पाना है, क्या क्या छोड़ना है, बकेट लिस्ट जीवन में क्या क्या करना है उसकी एक बकेट लिस्ट हो। ये बजट प्लानिंग भी होती है, फाइनेंस, ऐसा नहीं कि बस इकोनॉमी से चलता है वो, ऐसा नहीं कि ट्रैवलर जो गेस्ट है, गेस्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं गेस्ट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं ना उसमें गेस्ट के प्रकार क्या क्या है उस पर स्टडी होती है। कोई होते हैं जो नेचर लवर होते हैं, वो आए किस लिए है, नेचर देखने के लिए, उनका ज़्यादा समय नहीं रुकते। कोई एक होते हैं खाने पीने वाले, उनका इंटरेस्ट किसने है, खाने में, आए बरबर क्या पूछेंगे सबसे बेस्ट होटल कहाँ है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ खाने की कौन सी मिलती है, एक वो कैटेगरी। एक वो होते हैं जो घूमने फिरने वाले होते, खरीदारी, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे ऐसा खरीदेंगे, ये एक कैटेगरी है ग्रीन ट्रैवलर्स। एक होते हैं जो नेचर और उसमें भी ग्रीन ट्रैवलर्स उनको कहते हैं, जंगलों में घूमते हैं, वहां रहना तो निमित्त होता है बस रात के लिए, बाकी सारे दिन भर घूमते रहते हैं यहाँ प्रकृति एकांत। कुछ होते हैं जो मेडिटेटर्स होते हैं, वो भी घूमने आते हैं, पर उनका लक्ष्य होता है मेडिटेशन करना और वो कहीं घूमते नहीं है, एकांत शांत संसार के भीड़ भाड़ से अलग। तो ये गेस्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई होते हैं बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले, वो उसी लिए आए उसलिए होते हैं, पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा हो गए तो ऐसे अलग अलग प्रकार है। और गेस्ट अर्थात तो टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे और पैसे भी वेस्ट नहीं करेंगे और दूसरों का कराएंगे भी नहीं, हमारी वजह से दूसरों का टाइम वेस्ट ना हो और एंजॉय। ये सबसे अच्छी पॉइंट है, गेस्ट है तो क्या करेंगे, यहां पर 2 दिन के लिए आए हो, हंसो खेलो खुशी से रहो, आ रहे यहां पर भी खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी करके जा रहे। जैसे सुख कंटेजियस है वैसे दुख भी कंटेजियस है, दुख भी फैलता है। कोई व्यक्ति एक कमरे में एकदम दुखी रहे उसको देखकर दूसरा भी दुखी होता है। एक दुख संसर्गजन्य है, कंटेजियस है, फैलता है वो भी, जैसे खुशी फैलती है। और एक को नींद आती है हॉल में, डोमिनो इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट। और हाँ, जब जाते हैं तो गेस्ट के लिए क्या, होस्ट के लिए जो है उसके लिए या तो लेके आते हैं और जाते समय देके भी जाते हैं और धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। और गेस्ट अर्थात सबको थैंक यू। और मैं विश्व सेवाधारी हूं, यहां किस लिए आया हूं, सबकी सेवा करने आया हूं, मालिक बनकर हुकुम चलाने नहीं आया हूं, हेल्प करूंगा, उसकी मदद करूंगा, सहयोग दूंगा उनको जितना हो सके। और गेस्ट अर्थात हर एक बात में संतुष्ट, चाहे कमरा कैसा भी मिले, कमरा मिलते ही पता चला लाइट काम ही नहीं कर रहा है, नो कंप्लेंट्स, जो है खुश है उसमें, पता चला बाथरूम में पानी बीच में ही बंद हो गया है जो मिला जैसा मिला उसमें खुश है, तृप्त है, संतुष्ट है। और गेस्ट अर्थात टिप देने वाला। अच्छा गेस्ट अर्थात किसी को भी नौकर ना समझे, वो किसी को भी नौकर नहीं समझता है। गेस्ट अर्थात सबका रिस्पेक्ट करने वाला, सम्मान देने वाला। और गेस्ट अर्थात एडजस्ट, कैसी भी परिस्थिति में कैसा भी हो हर स्थान में एडजस्ट। कहीं पर बिस्तर है, कहीं पर है नहीं, कहीं पर सब कुछ है बाथरूम में, कहीं कुछ भी नहीं है, कंप्लेंट कोई है ही नहीं उसको। पर ये बड़ी ऊंची स्टेज है, पर यही तो पुरुषार्थ है। स्वयं को ढाल लेना ऐसे कि कहीं पर भी जो एडजस्ट हो जाए, कहीं पर भी, चाहे अकेले रहना पड़े या 20 लोगों के साथ रहना पड़े। और मेहमान अर्थात टाइम वेस्ट नहीं करे। और ऑब्जर्वर, और वो पारखी है, अच्छी अच्छी चीजों को देखता है और अप्रिशिएट करता है। अप्रिसिएशन, हर चीज वहां की अच्छी है। ब्यूटी लवर है वो, हर चीज वहां जा रहा है तो उसको अच्छी लगती है। और वहां, और ये भी एक है, ट्रैवल एक ऐसी चीज है हमें बहुत सिखाता है। इसके लिए जितने भी संसार के योगी तपस्वी, वो तो घूमते ही रहते थे, पर वो भी जो थिंकर्स थे बड़े बड़े, वो एक चीज करते थे, वर्ल्ड टूर, घूमते रहते थे। क्योंकि हर नए स्थान पे जाने के बाद वहां से कुछ ना कुछ व्यक्ति नई बात सीखता है, पता चलता है यहाँ की ये विशेषता है, यहाँ का ये चीज है, कुछ ना कुछ हर स्थान की अपनी विशेषता होती है। भाषाएं सीखता है, नई नई भाषाएं सीखता है। और वासनी का, वापसी का रूट जानते हैं। और पीछे से मेरा कुछ भी नहीं है, गाइड। और जो लोग साथ में है, कंपेनियंस, उनके साथ में हमारा नेचर एडजस्टेबल हो जाए, हम उनके साथ एडजस्ट करें। ऐसा नहीं कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हो या मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। और अपने घर बुद्धि में रहता है, निरंतर पता चलता है यहां हूं, पर जाना वहां है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। ये हो गया, अभी 2 दिन बाकी है, अभी 3 दिन बाकी है, अभी 1 दिन बाकी है, घूमते रहता है, बस कैसे जाऊं, बस पहुंचना है। यहां रहकर भी वहां की याद करता है, बुद्धि में लाता है फोटो। अच्छा, गेस्ट अर्थात यादगार, हंसी खुशी, हंसते नाचते गाते। हाँ, पर डिटैच्ड, गुड मेमोरीज, डायरी या फोटोग्राफ्स, ये सब चीजें नहीं, वही तो नहीं चाहिए। जगह पसंद आ जाए तो ये तो नहीं है। ये संसार में रहना है, परंतु ऐसे कि जैसे इस संसार में है ही नहीं। एक राजा रोज रात को अपने राज्य का सैर करता है, राज्य की देखता है। एक व्यक्ति रोज योगी है, एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ है, एक ही मुद्रा में जैसे बुद्ध बैठा हुआ है, इतना शांत, जरा भी नहीं हिलता है। और उसको कई बार वो देखता है, इतनी चेहरे पर शांत मुद्रा। एक दिन राजा उसके प्रेम में ही पड़ जाता है उसके, और उसके पास जाता है, कहता है कि मुझे, आप क्या कर रहे हो, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हो? वो कहता है, नो, आई एम मेडिटेशन, मैं खुद ही ध्यान हूं। राजा इतना प्रभावित हो जाता है, कहता है उससे कि तुम मेरे राज्य में चलो, मेरे महल में रहो, पर अंदर से कहते हुए ये भाव है कि ये ना कहे, क्योंकि ये योगी है ना। कहा क्या कि आप मेरे घर चलो, महल चलो, पर अंदर से ये इच्छा भी है कि ये ना चले, क्योंकि ये तपस्वी है, त्यागी है, भोग विलास से इसको क्या। पर वो तुरंत तैयार हो जाता है, हाँ चलो। राजा को लगता है मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी बोलकर, ये तो तुरंत मान गया, अपने महल में लेके आ जाता है। और देखता है जैसे राजा साहब भोग विलास कर रहा है, वो भी कर रहा है। राजा ने उसको सब कुछ दिया है, क्योंकि अपनी बात पे अब मुकर तो नहीं सकता है, सब कुछ उसको दे रहा है और वो सब कुछ कर रहा है। राजा को लगता है कहीं ये आदमी मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं वो जानबूझ के वहां रोज तो नहीं बैठता था, उसको पहले ही पता होगा मैं घूमता हूं राज्य में, सारे विचार चालू हो जाते। 6 मास बीत जाते। एक दिन दोनों सुबह सैर कर रहे होते, राजा कहता है मेरे मन में एक प्रश्न है, 6 मास से एक प्रश्न है, पूछू? कहते 6 मास तभी पूछ लेना चाहिए था। वो कहते तुम में और मुझ में अंतर क्या रहा आप? वो कहता है बताता हूं, चलो नदी के उस पार चलते जहां राज्य की सीमाएं समाप्त होती है, वहां क्यों जाना जरूरी है? वो कहते हैं हाँ। राज्य की सीमा के बाहर आते वो तपस्वी कहता है चलो अभी हम इस राज्य को छोड़कर निकल जाते हैं। वो कहते मैं कैसे जाऊं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा राज्य, राज्य की समस्या है। वो तपस्वी कहते ना कोई मेरी बीवी है, ना मेरा कोई राज्य है, ना मेरा कोई घर है, ना मेरे कोई सुख सुविधाओं की मुझे चाहना है, मैं जा रहा हूं बस यही अंतर है तुझ में और मुझ में, कि मैं उस झाड़ के नीचे भी वैसा ही था, इन सारी सुख सुविधाओं के बीच में भी मैं अंदर से वैसा ही था, तो मैं जा रहा हूं, आपको चलना है तो चलो। राजा सोचता है कि इसको रोक दूं। वो कहता है तुम ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे रोको, परंतु फिर पश्चाताप करोगे कि मैंने फिर धोखा दे दिया अगर मैं रुक गया तो। हो सकता है कि तुम अगर मुझसे कहो कि रुक वापस लौट चलो तो मैं वापस लौट जाऊं, पर फिर तुम ही पश्चाताप करोगे मन ही में कि मैंने बोला क्यों दोबारा फंसने के लिए। इसलिए राजन तुम रहो यही, यही अंतर है तुम में और मुझ में। मैं यहां होते हुए भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और सब है, उपभोग कर रहा हूं, परंतु अंदर में कोई भी आसक्ति नहीं, जब चाहूं तब तिनके की तरह छोड़ दूं। तो मेहमान अर्थात इतना अनासक्त अंदर से, कोई आकर्षण नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, नॉन अटैचमेंट। तो आज सारे दिन भर क्या प्रैक्टिस करेंगे? मैं मेहमान हूं, जैसे मधुबन में आप सब लोग आए 3 दिन रहे, अभी आज जा रहे हैं ना, हाँ, तो जैसे यहां कोई भी अटैचमेंट नहीं थी, अपने घर में भी कोई अटैचमेंट नहीं रखना, तो ऐसी कोई भी अटैचमेंट जो हमें मोह के बंधन में फंसा दे वो नहीं हो, ना हमें कोई चीज वेस्ट करनी है। यदि हमारे यहां कोई मेहमान आता है, ये एक दूसरा टॉपिक है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, मेहमान नवाजी। एक तो हम मेहमान हैं, एक दूसरा है मेहमान नवाजी। तो लास्ट एक बात बता रहे हैं और क्लास को पूरा करते हैं। एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति के यहाँ एक मेहमान आता है, वो पूछता है क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? मेहमान कहता है ठंडा। वो पूछता है कोल्ड ड्रिंक या जूस? वो कहता है कोल्ड ड्रिंक। तो कहता है कांच के ग्लास में लोगे या स्टील के ग्लास में? वो कहता है कांच के ग्लास में। वो कहता है डिजाइन वाला ग्लास या प्लेन ग्लास? वो कहता है डिजाइन वाला ग्लास। वो कहता है कौन सी डिजाइन, फूलों वाली डिजाइन या लाइन? वो कहता है फूलों वाली डिजाइन। कहते कौन से फूल, गुलाब के या चमेली के? कहता है गुलाब के फूल। फिर अपनी पत्नी को पूछता है वो गुलाब के फूल वाले कांच के ग्लास में जरा कोल्ड ड्रिंक लेके आना, तो वो कहती है कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो जब कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है तो छोड़ो, फिर हमारे मेहमान को मजा ही नहीं आएगा, मत लाओ। तो एक तो है मेहमान खुद बन के जा रहे हैं, और दूसरा कोई हमारे घर आए तो मेहमान नवाजी कैसी करे, ये एक हॉस्पिटैलिटी, एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज सारे दिन भर क्या याद रखेंगे, मैं कौन हूं? गेस्ट। इसको क्या कहते हैं? गेस्ट कॉन्शियसनेस। काम ना आएगा ये दुनिया का मेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, कुटुंब कबीला सारा झूठा है झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी, यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, दुनिया खिलौना है जैसे मालिक का ठेला, हाय आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तू जो कहे कि मैं हूं, झूठी है बात तेरी, वो ही बनाने वाला और वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने दो ही दिन ना भूलना बस। कौन से वो दो दिन है जिसको नहीं भूलना है? एक दिन वो आने वाला और एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। ओम शांति।
काम आएगा ये दुनिया का मेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। अभी यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। दुनिया खिलौना जैसे बालक का खेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तू जो कहे के मैं हूँ झूठी है बात तेरी, वो ही बनाने वाला वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने दो दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला।